जबूर 51, बहाली का सफर। आप क्यों गाते हैं? मेरा ख्याल है कि आप गाते जरूर होंगे, अक्सर लोग गाते हैं। ऐसा मालूम होता है कि गाना इंसानी फितरत का हिस्सा है, ख्वाह इंसान बहुत छोटा हो या बहुत बूढ़ा, हम सभी को गाने का शौक होता है। हम खुशी में गाते हैं, हम गम में गाते हैं, हम गुस्से में भी गाते हैं। कभी सिर्फ इसलिए गाते हैं कि कोई धुन हमारे जहन में अटक जाती है। ये अजीब बात नहीं, चंद आवाज़ों का एक सिलसिला हमारे जहन को बार बार उन्हीं को दोहराने पर मजबूर कर देता है। हम कहते हैं कि वो धुन दिल में बैठ जाने वाली है। मुमकिन है कि उसके अल्फाज ज़्यादा मायने खेज ना हों, लेकिन एक अच्छी तरह लिखी हुई धुन मुद्दतों हमारे साथ रहती है। लेकिन बास गीत सिर्फ दिलकश नहीं होते, बल्कि एक कहानी बयान करते हैं। वो जज्बात को बेदार करते हैं, वो हमें एक सफर पर ले जाते हैं, वो हमें झंझोड़ देते हैं। कभी हमारे दिल को खुशी से उछाल देते हैं और कभी हमारी आंखों को अश्कबार कर देते हैं। जबूर भी गीत हैं, उन्हें गाया जाने के लिए लिखा गया था। उनमें से बहुत से हमें एक रूहानी सफर पर ले जाते हैं। आमतौर पर ये खुदा से मुखातिब होते हैं, इसलिए ये दुआएं भी हैं। लेकिन दुआ के दो पहलू होते हैं, एक ये कि हम अपनी दरख्वास्त खुदावंद के हजूर पेश करते हैं और उससे मदद मांगते हैं, दूसरा ये कि दुआ हमें खुद भी बदल देती है। और जबूर की दुआएं अक्सर हमें एक रूहानी सफर से गुजारते हुए हमारी जिंदगी को तब्दील करती हैं। हमने इस सीरीज में जबूर 3 का मुतालिया किया था, दुबाव के वक्त दुआ। दाऊद उस जबूर का आगाज इस तराब से करता है क्योंकि उसका अपना बेटा उसका ताकुब कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे जबूर आगे बढ़ता है, वैसे वैसे दाऊद भी एतमाद की मंजिल तक पहुंचता है कि खुदावंद उसकी हिफाजत करेगा। हमने जबूर 13 भी देखा, वादी से पहाड़ की चोटी तक। दाऊद मायूसी से आगाज करता है, वो पूछता है कि खुदा अपना चेहरा उससे क्यों छुपाए हुए है। लेकिन आखिर में वो खुशी मनाता है, वो खुद भी बुलंद होता है और हम भी, जब उसे पढ़ते हैं और दुआ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जबूर 25 में आजमाइशों में खुदावंद की बड़ाई करना। दाऊद खुदा से दरख्वास्त करता है कि वो उसे अपनी राहें दिखाए और उसकी रहनुमाई करे। उसके जज्बात कभी नीचे जाते हैं और कभी ऊपर, क्योंकि वो अपनी मुसीबत और तकलीफ पर भी गौर करता है। लेकिन साथ ही अपने आप को ये यकीन भी दिलाता है कि खुदा उन लोगों के साथ है जो उस पर भरोसा करते हैं। और जबूर 42 और 43 में मायूसी से मुसर्रत तक दाऊद ने खुद एक ऐसा उन्वान दिया जो उसी रूहानी सफर की अकासी करता है। आइए अब देखते हैं कि जबूर 51 में दाऊद हमें किस सफर पर ले जाता है। ये जबूर गालबन 150 जबूरों में से सबसे ज्यादा वाजिया तौर पर बताता है कि ये कब और क्यों लिखा गया। इसके इनवान में लिखा है, दाऊद का जबूर जब नातिन नबी उसके पास आया, बाद जो जब वो बैतसबा के पास गया था। हमने चंद हफ्ते पहले इतवार की शाम दूसरे सैमुएल के सिलसिलावार मुतालिया में ये वाकया सुना था। दाऊद महल की छत पर टहल रहा था जबकि उसे अपनी फौज के साथ मैदान जंग में होना चाहिए था। उसने बैतसबा को अपने घर की छत पर गुसल करते हुए देखा। आजमाइश से मुंह मोड़ने की बजाय उसने उसे अपने पास बुलवाया और उसके साथ जना किया। जब बैतसबा हामला हो गई तो दाऊद ने अपनी अपने गुनाह पर पर्दा डालने की कोशिश की। उसने उसके शोहर हत्ती ओरिया को मैदान जंग से वापस बुलवाया, लेकिन ओरिया इतना बाअसूल था कि जब उसके साथी जंग में थे तो वो अपने घर में आराम करने पर आमादा ना हुआ। तब दाऊद ने उसे जंग की शदीद तरीन तरीन जगह पर भेजा भेज दिया ताकि वो मारा जाए। बाद में नातिन नबी दाऊद के पास आया और उसे एक कहानी सुनाई। एक अमीर आदमी के पास मेहमान आया, लेकिन उसने अपने बेशुमार रेवर में से कुछ लेने की बजाय एक गरीब आदमी की वाहिद भेड़ छीन ली और उसको ज़बह करके मेहमान की खातिर तवाज़ा की। दाऊद उस जुल्म पर सख्त गज़बनाक हुआ जब उसने मुतालबा किया कि उस आदमी को सजा दी जाए, तो नातिन ने उसकी तरफ उंगली उठाकर कहा, तू ही वो आदमी है। ये ज़बूर अपने गुनाह पर मलामत किए जाने के बाद दाऊद का जवाब है। अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? क्या बहाना बनाते? क्या इनकार करते? क्या बात को दबाने की कोशिश करते? ये कहते हैं कि मैं बादशाह हूं जो चाहूं, या आप ये कहते कि मैं बादशाह हूं जो चाहूं मैं कर सकता हूं। लेकिन दाऊद ने इकरार किया और उसने ये जबूर लिखा। इससे भी बढ़कर उसने ऐसा गीत लिखा जिसे वो चाहता था कि सब लोग सुने। उन्वान दोबारा देखिए, सुर गाने वाले के लिए। दाऊद चाहता था कि सब लोग वो सफर सुने जिससे वो अपने गुनाह का सामना करते और उसका इकरार करते हुए गुजर रहा था, और वो चाहता था कि उसकी कौम भी उसी रास्ते पर चले। हम क्यों गाते हैं? शायद बहुत कम ऐसा होता है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करने के लिए गाएं, लेकिन यही वो सफर है जिस पर ये जबूर हमें ले जाता है, रहम की फरियाद। दाऊद सबसे पहले खुदावन से रहम की दरख्वास्त करता है। वो बादशाह की हैसियत से नहीं आता, ना एक रास्तबाज इंसान के तौर पर, वो सिर्फ एक गुनाहगार की हैसियत से आता है जो मुकम्मल तौर पर खुदा की शफकत पर भरोसा करता है। पहली और दूसरी आयत में, मेरे साथ आप अपनी बाइबल्स में देखें, जबूर 51 उसकी पहली और दूसरी आयत में यूं मरकूम है, ऐ खुदा अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर। आखिरी बार आपने कब खुदा से रहम मांगा था? आप रहनुमाई मांगते हैं, सेहत मांगते हैं, हिकमत और कुव्वत मांगते हैं। ये सब चीज़ें अच्छी दुआएं हैं, लेकिन आपने आखिरी मर्तबा खुदा से कब रहम मांगा? क्या मसीही बनने के बाद आपने गुनाह करना छोड़ दिया है? अगर ऐसा है तो आप हर मसीही से मुख्तलिफ हैं जिन्हें मैं जानता हूं। नहीं, हम अब भी गुनहगार हैं, और यकीनन रूहुल कुद्दस हमें अपने गुनाहों का पहले से ज्यादा एहसास दिलाता रहता है। इसलिए ये अल्फाज हर रोज हमारे होंठों पर होने चाहिए। इकरार, तीसरी से छठी आयत में जबूर नवीस लिखता है, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। मैंने फक्त तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किया है जो तेरी नज़र में बुरा है, ताकि तू अपनी बातों में रास ठहरे और अपनी अदालत में बेऐब रहे। देख, मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। देख, तू बातिन की सच्चाई पसंद करता है और बातिन ही में मुझे दानाई सिखाएगा। हम अक्सर जिंदगी की हुरमत और उस बात पर गुफ्तगू करते हैं कि जिंदगी कब शुरू होती है। साइंस वाजह तौर पर बताती है कि बच्चा पैदाइश से पहले भी अपनी अलग जिंदगी रखता है। बाइबल भी यही सिखाती है। खुदा फरमाता है कि वो हमें रहम मादर रहमे मादर ही में जानता है। लेकिन दाऊद एक कदम और आगे जाता है। वो कहता है कि वो रहमे मादर ही में एक गुनहगार था। कोई ऐसा लम्हा नहीं था जब वो रास्त पास था। ये बड़ा गुनाह उसके सामने है, लेकिन सिर्फ यही नहीं, उसकी सारी जिंदगी के गुनाह उसकी आंखों के सामने हैं। अगर खुदा उसे हलाक कर देता तो वो इंसाफ ही होता, लेकिन दाऊद जानता है कि खुदा का इरादा कुछ और है। बहाली की फरियाद। इसके लिए आप मेरे साथ अपनी बाइबल्स में 7वीं से 12वीं आयात तक देखें। जूफे ने मुझे साफ कर जूफे से मुझे साफ कर तो मैं पाक होऊंगा। मुझे धो और मैं बर्फ से ज्यादा सफेद होऊंगा। मुझे खुशी और खुरमी की खबर सुना, ताकि वो हड्डियां जो तूने तोड़ डाली हैं शादमान हों। मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले और मेरी सब बदकारी मिटा डाल। ऐ खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में अस्से सर नो मुस्तकीम राह डाल। मुझे अपने हजूर खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर और मुस्तदद रूह से मुझे संभाल। दाऊद क्या चाहता है? वो रहम मांग चुका है, वो मौफी मांग चुका है, लेकिन वो इससे भी बढ़कर कुछ और चाहता है। वो खुदा के साथ बहाली चाहता है, और जो शख्स बहाली चाहता है यकीनन वो पहले खुदा की कुर्बत का लुत्फ भी चख चुका होता है। ये किसी बेईमान की पुकार नहीं जो खुदा से ताल्लुक कायम करना चाहता है। ये एक ईमानदार की पुकार है जिसका खुदा के साथ ताल्लुक गुनाह की वजह से मजरूह हो चुका है, और वो चाहता है कि वो ताल्लुक दोबारा बहाल हो। दाऊद की दुआएं हमें दिखाती हैं कि गुनाह हमारी जिंदगी में क्या नुकसान पहुंचाता है। गुनाह हमें नापाक कर देता है। गुनाह खुदावन में हमारी खुशी छीन लेता है। गुनाह हमारे और खुदा के दरमियान रुकावट बन जाता है। गुनाह हमारी रूह को कुचल देता है। गुनाह हमें खुदा से दूर करता है और रूहुल कुद्दस के काम में रुकावट बनता है। गुनाह खुदा की खिदमत करने का जज्बा कमज़ोर कर देता है। क्या कभी आपने एक टीवी प्रोग्राम देखा है जिसमें किसी पुरानी चीज़ का हवाला दिया गया हो मगर आप समझ ना पाए हों? यहाँ भी ऐसा ही एक हवाला है। नामी आयत में यूं लिखा है, मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले और मेरी सब बदकारी मिटा डाल। यही तस्वीर पहली आयत में भी इस्तेमाल हुई है। पुराने जमाने में जब लोग स्याही वाले कलम या कलम से लिखते थे तो स्याही अक्सर कागज़ पर गिर जाती थी। इसके लिए उनके पास एक खास कागज़ होता था जिसे ब्लूटिंग पेपर कहते थे। वो उसे रोश उस स्याही पर दबाते और वो स्याही को अपने अंदर जज़ब कर लेता, जबकि असल कागज़ साफ रह जाता। क्या ये मसीह की ये खूबसूरत तस्वीर नहीं? वो हमारे गुनाहों को दूर करना चाहता है और हमें पाक करना चाहता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठाना पड़ा। पत्रस रसूल लिखता है, वो खुद हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के लिए जिंदगी गुजारें। उसी के मार खाने से तो तुमने शिफा पाई। पहला पत्रस उसका दूसरा बाप उसकी 24वीं आयत। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला हेडिंग है, तोबा करने वाले दिल का वादा। तोबा करने वाले दिल का वादा। दाऊद की बहाली की फरियाद ना उम्मीदी की पुकार नहीं है। वो पूरे यकीन के साथ जानता है कि खुदा उसे माफ़ करेगा और बहाल करेगा। इसलिए नहीं कि दाऊद उसका मुस्तहिक है, बल्कि इसलिए कि खुदा वफादार है। इसीलिए वो उस तब्दीली की तरफ देखता है जो उसकी ज़िंदगी में आएगी। आप मेरे साथ अपनी बाइबल्स में देखें, 13वीं आयत से 17वीं आयत तक यूं लिखा है, तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनहगार तेरी तरफ रजू करेंगे। ऐ खुदा, ऐ मेरे निजात बख्श खुदा, मुझे खून के जुर्म से छुड़ा। तो मेरी जुबान तेरी सदाकत का गीत गाएगी। ऐ खुदावन, मेरे होंठों को खोल दे तो मेरे मुंह से तेरी सिताइश निकलेगी। क्योंकि कुर्बानी में तेरी खुशनूदी नहीं, वरना मैं देता सोखनी कुर्बानी से तुझे कुछ खुशी नहीं। शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। दाऊद जानता है कि मुआफ़ी और बहाली की खुशी उसे खामोश नहीं रहने देगी। वो दूसरों को खुदा की राहें सिखाएगा, वो खुदा की रास्तबाजी का गीत गाएगा, वो अपने अल्फाज से खुदा की हम्द करेगा, वो अपनी फरोतनी से खुदा की ताज़ीम करेगा। यही तो अंजील की गवाही की पूरी कहानी है। जो शख्स खुदावंद से मुआफ़ी पाता है, उसकी ज़िंदगी में ऐसी शानदार तब्दीली आती है कि वो दूसरों को भी उसके बारे में बताए बगैर नहीं रह सकता, ताकि वो भी उस खुशी में शरीक हो सकें। अपने मुल्क के लिए एक बादशाह की फ़िक्र, अपने मुल्क के लिए एक बादशाह की फ़िक्र, और इसके लिए हम 18वीं और 19वीं आयत में से देखेंगे। अपने कर्म से सय्यून के साथ भलाई कर, यरूशलम की फसील को तामीर कर, तब तू सदाकत की कुर्बानियों और सोखनी कुर्बानी और पूरी सोखनी कुर्बानी से खुश होगा, और वो तेरे मज़बह पर बछड़े चढ़ाएंगे। दाऊद सिर्फ अपनी ज़ाती बहाली नहीं चाहता, वो पूरी कौम की बहाली चाहता है। पहले वो कहता है कि खुदा सोखनी कुर्बानियों से खुश नहीं होता, अब वो कहता है कि खुदा उनसे खुश होगा। फ़र्क क्या है? फ़र्क कुर्बानी में नहीं, बल्कि कुर्बानी पेश करने वाले के दिल के रवैये में है। दाऊद ने एक अजीम सफ़र तय किया है। वो रहम की फरियाद से शुरू करता है, फिर अपने गुनाह का सामना करता है, उसके बाद बहाली की तलाश करता है, फिर उस तब्दीली को अपनी ज़िंदगी में देखने की उम्मीद रखता है, और आखिरकार चाहता है कि यही तब्दीली उसकी पूरी कौम में भी आए। जब हम इस ज़बूर को पढ़ते हैं, तो यही हमारा सफ़र भी होना चाहिए। हमें खाली हाथ खुदा के हजूर आना चाहिए और सिर्फ उसके रहम के तालिब होना चाहिए। हमें अपने गुनाहों का इकरार करना चाहिए और उन पर दिल से अफसोस करना चाहिए। हमें सिर्फ मुआफ़ी ही नहीं, बल्कि मुकम्मल बहाली भी मांगनी चाहिए। बहाल शुदा खुशी हमें नई खिदमत और नए मकसद की तरफ ले जाती है, और हमें अपने अजीज़ों को अपनी कौम की रूहानी बहाली के लिए भी दुआ करनी चाहिए। आमीन।